ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. பகுத் சுந்தர் விஷய ஹை. சஹஜ் பி ஹை ஔர் கம்பீர் பி ஹை. ஔர் ஹர் ஏக் கே சாத் இஸ்கா பஹுத் நஸ்தீக் கா சம்பந்த் ஹை. கியூன்கி ஹர் பாபா கா பச்சா, பாய் ஔர் பஹன் யே சங்கல்ப் ரக்தா ஹி ஹை கி ஹமே பாபா கே பஹுத் சமீப் கா அனுபவ் ஹோ, பஹுத் நஸ்தீக் கா அனுபவ் ஹோ, அச்சா சா அனுபவ் ஹோ. சாய் வோ அம்ருத் வேலே பைட்தே ஹை, சாய் முரளி கே சமய பைட்தே ஹை, சாய் காஸ் தபஸ்யா கே சமய பர் பைட்தே ஹை, சாய் பரிவார் மே ரஹ்தே ஹை, சாய் காரோபார் மே ரஹ்தே ஹை, கஹீ பி ஹை பாபா கே பச்சே, ஹர் ஏக் கா யே சங்கல்ப் ஹோதா ஹை கி ஹம் பாபா கே பஹுத் நஸ்தீக் கா அனுபவ் ஹோ, அச்சா அனுபவ் ஹோ. அச்சா அச்சா அனுபவ் கா க்யா மானா, கிஸ்கோ அச்சா அனுபவ் கேத்தே ஹை? குட் ஃபீலிங், அச்சி ஃபீலிங், அச்சா லகே. மன் ஏகாகிர ஹோ ஜாய, புத்தி ஏகாகிர ஹோ ஜாய, ஏக்தம் தேஹ் ஔர் தேஹ் கே சம்பந்த் சே உபராம் ஹோ ஜாய, அஷரீரீ அவஸ்தா கா அனுபவ் ஹோ, விதேயி அவஸ்தா கா. பாபா கே சமீப் கா க்யா மானா, பாபா கே சமீப் கா அனுபவ், பாபா பாபா கா அனுபவ். யே தோ ஜ்ஞான கே த்வாரா பி பாபா கா ஜ்ஞான ஹம் சுன்தே ஹை, முரளி சுன்தே ஹை, ஔர் பாபா கி ஜ்ஞான கி பாயிண்ட்ஸ் ஹம் மனன் கர்தே ஹை, தோ அச்சா லக்தா ஹை, புத்தி கா விகாஸ் ஹோதா ஹை, அச்சி அச்சி பாயிண்ட்ஸ், நயி நயி பாயிண்ட்ஸ். ஹாஸ் தோர் பர் ஜோ நயே பாய் பஹனே ஆதே ஹை தோ உன்கோ பஹுத் அச்சா லக்தா ஹை, ஜப் வோ முரளி சுன்தே ஹை யா ஜ்ஞான் சுன்தே ஹை, மனன் கர்தே ஹை, அச்சா லக்தா ஹை உன்கோ, பஹுத் அச்சா லக்தா ஹை. தோ யே மனன் கி ப்ரக்ரியா கே த்வாரா பி ஃபிர் வோ சோர்ஸ் தக் பஹுஞ்ச்னே கி கோஷிஷ் கர்தே ஹை, கி இஸ் ஜ்ஞான் தாதா. பாபா நே பி தோ தீன் தின் பஹலே முரளி மே கஹா கி ஜ்ஞான் ஔர் ஜ்ஞான் தாதா கோ யாத் கர்னா, தோனோ சீஜே பாபா நே கஹி, ஜ்ஞான் பி ஔர் ஜ்ஞான் தாதா பி. ஜப் பாபா முரளி மே கஹதா கி பச்சே முஜே யாத் கரோ, முஜே யாத் கரோ. கித்னி பார் முரளி மே பாபா கஹதா முஜே யாத் கரோ? அச்சா க்யா யாத் கரே பாபா? பாபா கோ கேசே யாத் கரே? பாபா தோ யாத் ஹி ஹை. க்யா யே தோ ஹமே பூல்தா ஹை கி பாபா ஜோதி பிந்து நிராகார் ஸ்ரீ பரமாத்மா ஹை, பரம் தாம் மே ரஹ்தே ஹை, உன்கா ரூப் பி யாத் ஹை, கஹா ரஹ்தே ஹை வோ பி யாத் ஹை, கிஸ் சமய ஸ்ருஷ்டி பர் ஆகே அப்னா காரிய கர்தே ஹை வோ பி யாத் ஹை. யாத் தோ ஹை யே, ஃபிர் பி பாபா கஹதா ஹை முஜே யாத் கரோ. க்யா யாத் கரே? பாபா கோ யாத் கரோ கா ஏக் பாவ் யே பி ஹை கி ஜோ பாபா நே கஹா ஹை யா பாபா கஹ ரஹா ஹை யா ஜோ பாத் மேரி சமஜ் மே ஆயி ஹை உஸ்கி ஓர் மேரா கித்னா தியான் ஹை. தியான் பர் பி ஹை ஔர் தாரணா மே பி ஹை. பாபா யாத் ஹை நா? ஜப் ஹம் அப்னி ஜீவன் கோ பாபா கி ஸ்ரீமத் கே அனுசார் சலாதே ஹை, ஸ்ரீமத் கே அனுசார் சலாதே ஹை, ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो कौन याद है? बाबा याद है ना, श्रीमत याद है, हर वक्त अटेंशन है, नहीं ये नहीं करना है, ये तो अवज्ञा हो जाएगी, तो बाबा याद है ना। बाकी जो बाबा कहता है कि बाबा के समीप का अनुभव, समीप का अनुभव, एक याद है एक समीप का अनुभव, जैसे नजदीक कोई होता है बहुत नजदीक, बहुत कोई नजदीक होता है तो हर बात हम उससे शेयर करते हैं, कोई भी बात होगी उसको बताएंगे, हमारे बहुत समीप है ना, हर दिल की बात उससे करेंगे, नजदीक है ना, क्यों शेयर करते हैं हम, क्यों किसी को, जिसे फ्रेंड कोई होता है या कोई समीप होता है उसे क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छा गाइड करता है, अच्छा सहयोग देता है, हमारा वो शुभ चिंतक है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमारा सदा ही ऑलवेज हमारे लिए अच्छा सोचता है, तो उसको अप्रिशिएट करता है, हमारी हर बात को अप्रिशिएट करता है, ऐसे अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं, समीप है उनको हम कहते हैं, ये समीप है, हमारे समीप है, कोई बात भी होगी ध्यान जाएगा कि उससे बात करें, उससे शेयर करें। बाबा मुरली में कहता है कि समीप का भाव ये है बच्चे, जो मेरे समीपता का अनुभव करते हैं वो समान बनते जाते हैं, समीप और समान, जितना जितना हम बाबा के समीप हैं उतना समान, उसका बाबा के गुणों और शक्तियों का, बाबा का वाइब्रेशन आएगा ना मुझे, मैं नजदीक हूं ना। साकार में भी जब हम बाबा के पास कभी बैठने का मौका मिलता था झोपड़ी में या कहीं भी, तो जैसे ही बाबा के पास बैठते थे ना तो हमारी स्थिति उड़ने लगती थी, ऐसे बाबा के पास बैठने से। मुरली में भी उन दिनों में तो कुर्सियां सोफे होते नहीं थे, पहले तो छोटा था, जब मैं आया तब तो पांडव भवन के अंदर का हाल है, वो कईयों ने तो देखा ही नहीं होगा, पांडव भवन के अंदर भी एक छोटा सा हाल है, हिस्ट्री हाल बाद में बना, जिसमें बाबा मुरली चलाते थे वो अंदर में एक छोटा सा हाल है, छोटा सा, सामने गेट जो है पांडव भवन का अंदर का, अंदर कोई जाने देवे तो अंदर जाके देखो, एक छोटा सा हाल है। जब हम पहली बार आए थे तो बाबा वहां मुरली चलाते थे और हम सब 35-40 भाई बहने टोटल थे, टोटल पार्टियां मिला के, मधुबन निवासी मिला के, और मुरली के नीचे हम लाइन लिखा करते थे कि सीजन फुल चल रहा है और जगह नहीं है। उन दिनों में हम आए थे बाबा के पास, तो वो तो बाबा के साथ वैसे भी समीप का अनुभव होता था, क्योंकि बाबा के सामने तो बैठना होता था, जगह ही नहीं थी, तो हम समीप का भाव, ये वो समीप जो फिजिकली समीप की बात है, वो बहुत अनुभव किया बाबा के साथ का, समीप का अनुभव किया। जब हिस्ट्री हाल भी बना साकार में, बाबा वहां बैठ के मुरली चलाते थे, तो भी हम सामने सामने वो दरी पर ही बैठते थे, हम कोशिश करते थे सुबह जल्दी जल्दी जाके पहली लाइन में भी सबसे आगे बैठ जाएं बाबा के सामने, बाबा की पूरा टाइम दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, मुरली भी बाबा चलाता था दृष्टि भी देता था, कितना समीपता का अनुभव था, वो दिन याद करते हैं हम। बाद में अब एक बाप दादा भी आने लगे जब हिस्ट्री हाल में, तब भी हम आगे आगे चौकड़ी लगा के बैठते थे एकदम नजदीक बाबा के सामने, तो वो भी समीपता से भी बहुत शक्ति का अनुभव होता है। फिजिकल भी गुणों में समीपता और समानता की बात अलग है, मगर फिजिकली भी जब हम बैठते हैं ना बहुत नजदीक से तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जैसे सामने बैठे हुए हैं। कोई नजदीक बैठे ना, कोई दूर बैठा हुआ हो तो उसको कहते थोड़ा नजदीक आ जाओ, इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। पास में बिठा करके बात करने में थोड़ा अच्छा लगता है, नजदीक है ना, अच्छी गुड फीलिंग आती है, अपनेपन की फीलिंग आती है। तो ऐसे बाबा के दिनों में हम अनुभव करते थे। जब मुरली पूरी होती थी, बाबा की मुरली, तो उसके बाद चैम्बर होता था, चैम्बर उन दिनों में साकार बाबा की, शुरू शुरू की दिनों की बातें, हिस्ट्री हाल में नहीं, जब पांडव भवन के अंदर क्लास होता था तब चैम्बर होता था। चैम्बर किसे कहते थे कि मुरली के बाद सभी भाई बहने उठ करके, जब अभी दादी का रूम है पांडव भवन के अंदर जाओ तो लेफ्ट साइड में दादी का सिटिंग रूम हुआ करता था, दादी प्रकाशमणि का, अभी है वहां पर, उसका बहुत वन थर्ड था जो मम्मा का रूम था पहले पहले लेफ्ट साइड में, बाबा के रूम के पीछे मम्मा का रूम था, और मम्मा की बहुत बड़ी खटिया थी, और खटिया के बाद जगह कितनी रह जाती थी, थोड़ी सी जगह रह जाती थी जिसमें मम्मा अंदर जाकर के रेस्ट करती थी। तो जब क्लास पूरा होता था तो चैम्बर जिसे हम कहते हैं, सभी उठ करके मम्मा के कमरे में आते थे और बाबा और मम्मा दोनों खटिया पर बैठ जाते थे, बाबा भी मम्मा की खटिया पर बैठ जाते थे और हम नीचे बैठ जाते थे। अब जब हम नीचे बैठते थे तो थोड़े से भी ज्यादा आ जाए तो बैठ ही नहीं सकते थे, तो सबको कहते थे आगे बढ़ो आगे हो जाओ, जगह ही नहीं है। फिर हम जो आगे थे, छोटे थे हम, 19-20 साल की उम्र थी, हम छोटे थे तो हमको कहते थे और आगे हो जाओ, तो हम अपनी टांगे खटिया के नीचे करके सिर ऐसे करके बैठ जाते थे। मम्मा बाबा के जैसे हमारा सिर दिखाई देता था कि ये बैठे हुए, कितना अच्छा लगता था। आप देखो ये समीपता है ना, कितना अच्छा लगता है, कितना समीप की फीलिंग हम लोगों को मम्मा बाबा की रही होगी। आप देखो दिन में, उन दिनों में तो क्लासेस होते ही नहीं थे, आजकल तो सारा दिन क्लासेस हैं। हमारी मनोहर दादी एक बार हंसी में कहती थी, अरे भाई आप लोग यहाँ आ गए हो ना, यहाँ दो चीजें हैं, एक क्लास एक ग्लास, क्लास करो उठ के खाओ पियो फिर आ जाओ क्लास में, बस यही काम है। और उन दिनों में क्लास ही होती थी, क्लास होती नहीं थी, ग्लास ही था, खाओ पियो मौज करो, बस सुबह मुरली सुन ली, रात को मम्मा पापा मिलते थे बस। दिन में हमें घुमाते फिराते रहते थे, कभी किसी पहाड़ी पर कभी किसी पर ले चले, बस क्लासेस नहीं होती थी मम्मा पापा के टाइम पर। तो वो बचपन के जिंदगी थे, वो बचपन के दिन थे जो मम्मा बाबा की समीप की पालना, जिसे हमने बाबा की समीप की पालना जैसे की। अब सारा दिन क्या करेंगे, अब पार्टियों में भी कितने आते थे, दो दो चार चार आते थे, बड़ी बड़ी दादियां दो को लेके मधु बना रही हैं, चार को लेके मधु बना रही हैं, बस। अब कभी कोई दो चार बाबा के साथ नाश्ते में है, कभी दिन के खाने में है, बाबा के साथ कभी नाश्ता है कभी भोजन है, और सारा दिन क्या करेंगे कि जो पार्टियां विदाई ले रही हैं बाबा से, हम भी बैठ जाते थे, कोई पार्टी आ गई है, बाबा से मिल रही है, हम भी बैठ जाते थे। बाबा ही बाबा था सारा टाइम, पर बाबा के साथ ही हैं बस, और करना ही क्या है, वहां आ गए तो क्या करेंगे सारा दिन। इसलिए वो समीपता जिसे हम कहते हैं, ये समीपता फिर फिजिकल की बात है, मगर इससे भी बड़ा फायदा हुआ है। बाबा की इस समीपता से भी, संबंधों में समीपता से भी बाबा के नजदीक आते थे ना, तो रोज रोज बाबा देख रहा है ना, पहचान रहा है ना, ये कौन है। हम आ गए हैं, जितने भी वहां आए हुए हैं तो बाबा से कितनी बार मिल रहे हैं, सुबह क्लास में मिल रहे हैं, फिर दिन में मिल रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, कितनी बार मिल रहे हैं, कभी नाश्ते में मिल रहे हैं, कभी खाने पे मिल रहे हैं, कभी शाम को पिकनिक में मिल रहे हैं। तो बाबा एक एक को जानने पहचानने लग जाता था। उन दिनों में जो भी बाबा के बच्चे सेंटरों पर भी आते थे, बहुत करके मामा बाबा उनको जानते थे, क्योंकि चक्कर भी लगाते थे मामा बाबा, छोटी फैमिली। जब मैं आया था तब भारत में 11 सेंटर थे, 11 सेंटर, दिल्ली में था, अमृतसर में था, अंबाला में था, हरियाणा में, इधर लखनऊ कानपुर थे, टोटल 11 सेंटर। कुछ प्रांत तो थे ही नहीं, जो अभी कितने बड़े बड़े प्रांत हैं, जोन हैं, थे ही नहीं। 11 सेंटर्स थे। तो हम शिव जयंती का फंक्शन मनाया करते थे, एक शिव जयंती का फंक्शन सारे साल में, हैंडबिल छुपाते थे, 11 ही सेंटर जो इंडिया के थे उनके एड्रेस लिखते थे, और लोगों को कहते थे हमारी नेशनल संस्था है, 11 सेंटर है हमारे भारत में, इतना सम्मान होता था। कितना हो के हमको ये नहीं कि हमारा एक दो सेंटर है, हमारे 11 सेंटर हैं। आज देखो, आज संख्या देखो, तो कितना, और एक दूसरे को भी जानते थे। अगर कोई एक जगह पर भाई ज्ञान में चलने लगा, कुमार को ज्ञान में चलने लगा ना, तो वहां की दादी दूसरी दादी को चिट्ठी लिखती थी, पोस्ट कार्ड या लेटर, सारा दिन क्या काम करेंगे, ऐसे एक दूसरे को समाचार देते थे, हमारे पास एक कुमार ज्ञान में आने लगा है। दिल्ली में या और जगह पर समाचार भेज देते थे, बाबा को तो लिखते थे और सेंटरों को भी लिख देते थे। फिर हम जब उनको कभी मिलते थे मधुबन में, अच्छा आप करनाल से अमीर चंद भाई हो, मुझे पता है, वो दादियां कहती थी। कितना आप देखो, आप फील करो कि उसमें कितनी फैमिली हमारी छोटी थी, और कितना आपस में एक दूसरे को हम जानते थे, संबंध स्नेह में थे, बहुत अपनेपन की फीलिंग आती थी। ये समीपता परिवार में समीपता की बात है। बाबा के साथ तो साकार में थे, बाबा जानते थे हर एक को, मामा बाबा जानते और पहचानते थे। तो ये समीपता भी समानता के नजदीक ले आती है। हम जिसका जितना समीप होंगे स्थूल में भी फिजिकल में भी, तो उसके जो गुण और उसकी क्वालिटी है, स्वभाव संस्कार हैं, वो हमारे ऊपर असर करते हैं। आप देखेंगे जिनके साथ कोई साथ ज्यादा रहेगा ना कंपनी में, तो कंपनी का इफेक्ट हो जाता है, उसका संग का रंग जिसे कहते हैं। जिसके साथ आप ज्यादा रहेंगे ना, नेचुरल है कि उनके जो उनकी जो गुण और उनका स्वभाव संस्कार है वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है, इफेक्ट करता है। ऐसे जब हम बाबा के समीप रहते थे साकार में, तो बाबा को हम देखते थे, कैसे बाबा आके सामने दृष्टि देता है, कैसे बाबा आकर के बैठता है, ऐसे देखते थे ना बाबा को साकार में, और कैसे बाबा की दृष्टि एकाग्र हो जाती थी। बाबा आके ऐसे सुबह मुरली के टाइम बैठता था, बस ऐसे इतना पावरफुल, ऐसे बस बैठते ही बाबा जैसे बीज रूप, जिसे हम आजकल कहते हैं ज्वाला स्वरूप कहते हैं, बाबा की स्टेज बन जाती थी एक सेकंड में। निराकार साकार का कनेक्शन, किसी को पर अगर ऐसी दृष्टि बाबा की रुक गई तो इतनी जैसे उसकी भी बैटरी चार्ज हो जाती थी, पावरफुल दृष्टि जिसे आज भी कहीं नहीं चलते फिरते कहते दृष्टि दो दृष्टि दो, तो दृष्टि का महत्व है ना, तो वास्तव में उन दोनों की बात है। तो ये जो समीपता और समानता का भाव ये है कि जितना हम जिसके भी समीप आते हैं उसके गुणों का भी हमारे ऊपर असर होता है, संग का रंग होता है, ऐसे हम बाबा के भी जितना हम, अब साकार में तो बाबा है नहीं, अभी जो आज अभी वर्तमान समय में इस विषय को हम इस ढंग से लेते हैं कि हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ निराकार के साथ कितना अंदर में, वो मन बुद्धि बाबा के साथ कैसे हमारा अनुभव होगा, अभी जितना हम बाबा की मुरली का मनन करेंगे, मुरली को ध्यान में रखेंगे, आप करके देखना 15 दिन, कोई करके देखे 15 दिन, कोई मुरली जैसे आज जो मुरली चली, इस मुरली में से 5 कोई पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट, और दिन में 5 बार उसको रिपीट कर लो, 1 मिनट लगेगा रिपीट करने में, पहली बार थोड़ी सी ज्यादा टाइम लगेगा, फिर आपको फटाफट लगेगा, 5 बार रिपीट कर लो, और रात को जब सोने लगो तो ऐसे जैसे बाबा को, बाबा मुझे आज की मुरली याद है, आज बाबा आपने ये सुनाया, 5 बातें बाबा को सुनाओ रात को सोने समय, आप 1 हफ्ते के अंदर देखो कि आपको बाबा का कैसे अनुभव होने लग जाएगा। आपने बाबा का कार्य करना शुरू कर दिया, सुन तो रहे हम समझ भी रहे हैं, प्रैक्टिकल करना शुरू किया। बाबा का अनुभव तब होता है जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, बच्चा है ना आज्ञाकारी, मन बच्चा, बच्चे की पहली विशेषता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी बच्चे को बाप का मां बाप का प्यार स्वतः मिलता है, अपने आप मिलता है। अब मैंने कई बार भाई बहनों को कहा कि ये मुश्किल काम है, कहते मुश्किल नहीं है, करते हो करते नहीं है बहुत इजी और होता नहीं है, देखो कमाल है कि नहीं, आप देखो वंडरफुल है कि 5 पॉइंट को 5 बार याद करना है, मुरली की पॉइंट को, इतना सहज पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ, और उसे बाबा आपके सामने रहेगा, मुरली याद रही तो बाबा रहा ना, बाबा की बात याद रही तो बाबा याद रहा। जब हम कहते हैं कि मुझे किसी कोई किसी की याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, उसकी कोई बात ही तो याद आ रही है, जिसकी याद आ रही है उसकी बात याद आ रही है, अगर बाबा की बात याद आएगी तो बाबा याद आएगा। सहज तरीका है, बहुत सहज पुरुषार्थ है, सहज, आप करके कोई देखे, मुश्किल कुछ नहीं है। 5 बार आपने अगर उसको रिपीट करना है, 5 बार आप जैसे खाना खाने बैठते हो या कुछ खाने लगते हो तो कहते हैं ना बाबा को याद करो, बाबा को याद करके खाओ, आप उसमें 5 पॉइंट याद कर लो, बाबा ही तो याद है। जब आपने खाना खाने लगो, आज बाबा ने ये कहा था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, बस आज का वरदान था, स्लोगन था, प्रश्न उत्तर था, तो कुछ भी 4-5 बातें सिंपल सी, मुरली याद रही आपको बाबा याद रहा, मुरली याद रहेगी तो उसके बाद का स्टेप फिर है, पहला सुनना और समझना, फिर याद करना, और उसके बाद स्वरूप बनना। याद ही नहीं है तो धारणा क्या होगी, याद ही नहीं है, आज की बात याद नहीं है, बाकी कल वाली याद है या और चीजें याद है। तीव्र पुरुषार्थी भी किसे कहते हैं, कई पूछते हैं तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां क्या हैं, यही तो है और क्या है तीव्र पुरुषार्थी का, रोज का काम कर लो बस, तीव्र पुरुष है। आज जो बाबा ने कहा है उसको प्रैक्टिकल देखो, मेरे से हो रहा है करो, प्रैक्टिकल करो। आज की बात आज करो, तीव्र पुरुष है। तो ये है समीपता और समानता। अब इसके बाद की जो मुख्य बात है, इससे लिंक जो है कि यज्ञ स्नेही बनने से भी हम बाबा के समीप आते हैं, जो आज का विषय है यज्ञ स्नेही। बाबा का यज्ञ है ना, ये तो हम सब जानते हैं कि यज्ञ किसने रचा है, ये बाबा ने रचा। ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो है ये किसने रचा है, बाबा ने रचा। सब जानते हैं बाबा ने रचा, ये बाबा का यज्ञ है। अब बाबा के स्नेही, क्योंकि जिसका यज्ञ है उसके स्नेही, अगर यज्ञ स्नेही, यज्ञ स्नेही का क्या मायना है, यज्ञ को अपना समझना, स्नेह माना प्यार है, या अपना है ना प्यार, जो अपनी चीज होती है उससे प्यार होता है। आपके तो ये मेरी मोटर है, ये मेरा ये घर है, ये मेरा बच्चा है, जिसको आप मेरा कहते हो उससे तो प्यार होगा ही होगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्वाभाविक है। ये मेरा कहने से ही आप प्यार होता है, स्नेह होता है। जब यज्ञ को हम अपना समझते हैं कि ये यज्ञ है, बाबा ने रचा है, शिव बाबा ने रचा है, मेरे बाबा का यज्ञ है, मेरा है ना, तो यज्ञ स्नेही का क्या भाव है। यज्ञ का स्नेह मना यज्ञ तो मेरा है। स्नेह का क्या भाव होता है, किसने का मायना होता है कि अगर हम यज्ञ का इस कार्य में, यज्ञ के कार्य में अपना जितना सहयोगी, बाबा ने कहा सहयोगी ही स्नेही है। स्नेही किसे कहेंगे, जो सहयोगी होगा वो स्नेही होगा, दोनों इकट्ठे या साथ साथ है। जितना मैं ये इस यज्ञ के लिए अपना तन मन धन जो कुछ भी मेरे से हो सकता है इसके कार्य में, यज्ञ मैंना कार्य है, बाबा का कार्य है, और यज्ञ का क्या मैंना है, बाबा का कार्य है ना, इस कार्य में मैं सहयोग देता हूं, मैं समझता हूं, वो अलग चीज है। ठीक, ओके, मैं समझता हूं। बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल सारे कहने लग गए, जिसके पास जाओ आज राखी का दिन है, बड़ी बड़ी जो सेंटरों पर बड़ी बड़ी बहनें हमारी, अभी भी फोन हमें आया कि हरियाणा के सीएम से मिले हैं, गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, कितने हाईकोर्ट के जजेस को मिल रहे हैं, कितने आईएएस को मिल रहे हैं, आज हर जगह पर ही बहुत लोग मिल रहे हैं। वो कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य, सब यही कहेंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस वो अच्छा अच्छा कहते हैं मगर उनका सहयोग कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली सहयोग कुछ भी नहीं है। तो वो स्नेह जो है वो ऊपर का है, ऊपर का स्नेह है बस। जैसे हम किसी की तरफ देख के मुस्कुरा देवे, वो भी मुस्कुरा देगा, बस और क्या करेगा, बस फिर चलेगा इधर उधर चलेगा, फिर और क्या हुआ उसे। मगर एक है जिसकी मैंने हेल्प की है, मदद की है, समय पर सहयोग दिया है, वो स्नेह और चीज है। टाइमली मैंने हेल्प किया उसको, समय पर उसको जरूरत थी, मैंने उसको सहयोग दिया है, वो स्नेह पैदा करता है। सहयोग स्नेह को पैदा करता है। अब कितने भाई बहने हैं उनको पता है, संगम युग है, संगम युग है, सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, कितना टाइम है, थोड़ा टाइम बाकी है। ये भाग्य विधाता है, भाग्य विधाता है, भाग्य बना रहा है, भाग्य बना रहा है, आप क्या कर रहे हो। इसलिए दादी कहती है मैं कौन, मेरा कौन, तीसरा दादी क्या कहती है, मैं कर क्या रहा हूं, प्रैक्टिकली क्या कर रहा हूं। अंदर ये भी है कि 84 जन्मों की प्रारब्ध हमारी 21 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा भाग्य बन रहा है, और अपनी जेब में से नोट गिनती के निकाल के भंडारी में डाल देंगे, बाकी किसके लिए, वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बैंक बैलेंस परिवार के लिए है,
थोड़ा सा भंडारी में, थोड़ा सा भंडारी। 21 जन्मों की प्रारब्ध गिन करके और जो कार्मिक अकाउंट है वो अनगिनत, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये क्या चीज है, क्या चीज है ये अंदर में कथनी और है, प्रैक्टिकली कुछ और है। अब कोई कहे बाबा मैंने आज एक घंटा याद किया, बाबा मैंने एक घंटा याद किया, बाबा कहेगा 23 घंटे क्या किया? तो खुश हो रहा है, खुश हो रहा है कि एक घंटा मैंने याद किया, एक घंटा याद किया, बाबा को फिक्र है तेरे 23 घंटे का, तो बाकी कहां जा रहा है, बाकी किस तरफ लग रहा है तेरा? तन मन धन तेरा है तो सब कुछ बाबा का, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं गीता बजता सारे डांस करने लग जाते हैं, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाकी भंडारी में गिनती डालूंगा, बाकी नहीं डालूंगा। हूं मैं बाबा का, मगर मेरा तन मन धन है परिवार के लिए, लौकिक के लिए। देखिए क्या चीज है ये, स्मीपता की निशानी नहीं है ये। सहयोगी होगा उसमें स्नेह पैदा होगा, इसमें स्नेह और सहयोग का दोनों का गहरा संबंध है आपस में। और ऐसे हैं बाबा के बच्चे, ऐसे गिनती के हैं बाबा के बच्चे जिन्होंने कहा नो श्री बाबा आ गया, आ गया, संगम युग, संगम युग, मैंने क्या करना है, मैंने और कुछ करना ही नहीं है, यही करना है। ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं अब और कुछ नहीं करना है, मैंने कहा तुम्हारे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर क्या हुआ, कहता बच्चे भी पढ़ जाएंगे, हम बाबा के बच्चे हैं, बच्चे भी बाबा के, परिवार बाबा का है, बस उन्होंने लक्ष्य रखा और उनके बच्चे बाबा के हैं, बड़े होकर के बाबा के हैं। ऐसे हैं गिनती के हैं जिन्होंने वाकई बाबा के यज्ञ को समझा कि ये यज्ञ है बाबा का, बाबा आ गया है और मेरा भाग्य विधाता बाबा है, मेरा भाग्य मैंने बनाना है, बस परिवार को भी चलाना है, क्यों नहीं चलाना है, मगर मुख्य मेरा भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है, ये संकल्प रखकर के वो चल रहे हैं। ऐसे हैं बहुत है। सहयोग इतना उनको सहयोग है कि वो अंदर में बाबा के कार्य को, जैसे बाबा का कार्य नहीं है, मेरा कार्य, मेरा कार्य, बाबा मेरा मैं बाबा का, तो ये कार्य किसका है, मेरा कार्य है ना। सहयोग भी नहीं है, वो कहता काम ही मेरा है, सहयोग की तो बात दूसरी है, सहयोग में भी दूसरे को दिया जाता है, नहीं वो तो कहता काम ही मेरा है, बाबा का काम सब मेरा कार्य, ये तो करना ही है, करना ही है, बाबा के कार्य को पहली इंपॉर्टेंस है कि बाबा की यहां आवश्यकता है, आवश्यकता के समय पर जिसने मदद की, कार्य सहयोग दिया, तो बाबा क्यों नहीं उसको रिटर्न करेगा, 100 times रिटर्न करेगा। समय पर सहयोग दिया, जरूरत के टाइम पर, आवश्यकता के समय पर, इसलिए इस चीज को समझना है कि ये जो बाबा का यज्ञ का स्नेह का भाव क्या है। बहुत है ऐसे, मैंने देखा है बहुत है, मेजोरिटी ऐसे हैं जो पहले अपना परिवार, अपना कारोबार सब कुछ ठीक है और बाकी थोड़ा बहुत बाबा की भंडारी के लिए, थोड़ा बहुत, बाकी अपने परिवार को सबको तो देखना है ना सब। एक कुमार था हमारे वहां पर, वो मुझे कहता है भाई जी मैंने आज से ये फैसला किया है कि 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है ना, मैं सारा महीने खर्चा करूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, लास्ट में जो बच जाएगा ना मैं वो भंडारी में डाल दूंगा, ताकि मुझे महीने भर जरूरत हो तो मांगना ना पड़े। मैंने कहा हाँ, बाबा भी देख रहा है, बाबा कहेगा बची हुई बादशाही तेरी, पहली वैली किसी और की। वो अगली बार कहता नहीं मैं 1 तारीख को डाला करूंगा भंडारी में। हम जो सोचेंगे जो संकल्प करेंगे वही तो रिटर्न मिलेगा ना, हमें रिटर्न क्या, मेरे थॉट्स में क्या है यज्ञ के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस पहले बाबा, बाकी भी बाबा क्यों, बाबा ये थोड़ा कहता है कि आप परिवार को ना संभाल करो, देखो नहीं परिवार की तरफ, ये तो बाबा कहता ही नहीं। मगर जितना बैलेंस बाबा कहता है, बैलेंस रखो बच्चे, बैलेंस। बहुत समय पहले मुझे याद है धर्मशाला में मुझे टेलीफोन आ गया, एक भाई का टेलीफोन था कि भाई जी धर्मशाला में प्रदर्शनी करनी है, बहुत साल पहले की बात है। मैंने कहा भाई प्रदर्शनी तो करेंगे, वहां तो अभी सेंटर नहीं खुला है, तो कुछ भाई थोड़ा बहुत भाई पैसे का भी सहयोग कहीं से मिल जाए, अकेला ही। कहता है मेरे पास डाकखाने में रखा हुआ है, मैं गांव में आया था यहां पर हिमाचल में धर्मशाला में, यहां बाबा का झंडा ही नहीं है, भाई जी आप आ जाओ, मेरा जो डाकखाने में पैसा है हम प्रदर्शनी लगाएंगे। और बाद में सेंटर खुल गया वहां पर, एक व्यक्ति ने, एक ने, क्या चीज है ये, इसे कहते हैं बाबा का प्यार, इसे कहते हैं सेवा हो जाएगी बाबा की, बाबा का प्रत्यक्षता होगी, लोग बाबा को जान जाएंगे, प्रदर्शनी लगी 10-15 लोग निकलाए, वहां का सेंटर का सहयोग हो गया अपने आप ही। वो भाई अपने ड्यूटी पर आया था, छुट्टी पर चला गया वापस, सेंटर खोलने के निमित्त बना। बाबा का कार्य है ना, ये है बाबा का कार्य, ये स्नेह, ये स्नेह यज्ञ स्नेह में ना, बाबा का यज्ञ बढ़े, बाबा का यज्ञ विस्तार को प्राप्त करे। जिन आत्मों को रोज बाबा मुरली में कहता है, जिनको संदेश नहीं मिला बच्चे, उनको संदेश मिल जाए, ये थॉट चलता रहे, मेरे पास रखा हुआ है ना। हमें याद है जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे, तब कोई शरीर छोड़ता था, तब थोड़ा छोटा परिवार था, तो बहनें भोग लगाया करती थी वतन में, बाबा उस आत्मा को बुलाया करता था भोग में, अभी भी होता है कई बार। तो एक बार बहन गई, किसी के निमित्त भोग था लेकर के, देखा तो वहां आत्मा को बाबा ने बुलाया, वो रोने लग गया। उसने कहा बाबा के पास आकर के ये रोता क्यों है, बाबा के पास तो सब लोग खुश होते हैं, हंसते हैं। बाबा ने कहा बच्चे क्या बात है, क्या बात है, बाबा बाबा मेरा बैंक में रखा था, मैंने कहा था मैं लगाऊंगा, मेरा शरीर ही छूट गया, वो मैं तनी क्या होगा उस पैसे का जो वहां पड़ा हुआ है। रो रहा। ये है संकल्प करते रहना, उन्हें बाबा कहता संकल्प के साथ कर्म भी कर। शुभ संकल्प की वैल्यू है, पर संकल्प जब तक कर्म में नहीं बदलेगा तो प्रारब्ध कैसे बनेगी, प्रारब्ध तो कर्म से बदलती है, केवल संकल्प से नहीं। इसलिए बाबा ने कहा नहीं यज्ञ स्नेही। और इसके अलावा एक दो और बातें हैं। अब यज्ञ स्नेही में हम ये तो तन मन धन की बात तो अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी कई भाई बहनें अच्छी तरह से समझते हैं कि अपना तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, जितना लगाओगे उतना मिलेगा, जब लगाओगे तब मिलेगा। ये तो सारी बहनें हमारी भाषण में सब लोगों को समझाती रहती हैं और समझते भी हैं। मगर यज्ञ स्नेही का एक और बड़ा गहरा मायना है, ये विषय जो है इस विषय की गहराई बहुत है। यज्ञ स्नेही का क्या मायना है, तन मन धन लगाना सहयोगी बनना ये तो अच्छी बात है, नहीं, ये यज्ञ मैना के कार्य है, ये बाबा का कार्य है, मेरा कार्य है। जितने भाई बहने हमारे सेंटरों पे समर्पित या सेवा दे रहे हैं या परिवार वाले आते हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं, यज्ञवत्स है। अपनी यथाशक्ति अपनी ताकत के अनुसार कार्य कर रहे हैं, नंबर वार तो है ही है, बाबा भी कहता है। यज्ञ स्नेही का मायना ये है कि यज्ञ वत्सों का स्नेही बनना जरूरी है। ये बाबा के बच्चे हैं और यथाशक्ति अपना सहयोग दे रहे हैं, कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसमें कमियां भी हो सकती हैं, कोई स्वभाव संस्कार भी हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं छोटी मोटी, संपन्न तो बने नहीं है। यज्ञ स्नेही का भाव सूक्ष्म ये है, हम हर बाबा के बच्चे के प्रति अंदर अपना स्नेह भाव रखें, कैसा भी है वो, कुछ भी है। अगर हम किसी की कमी कमजोरी को, बाबा ने क्या कहा था मुरली में, वो मुरली याद होगी आप लोगों को, एक मुरली में बाबा ने कहा किसी के अवगुण को चित्त पर रखना पाप है, किसी के अवगुण को चित्त पर रखना पाप है। दूसरी लाइन में क्या बाबा ने कहा था, किसी के अवगुण का वर्णन करना महापाप है, परचिंतन। इसे बाबा कहता परचिंतन पतन की जड़ है, तुम्हें नीचे गिरा देगी वो। यज्ञ स्नेही का मायना यह कि बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, अपनी यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं, वाह भाई वाह, अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। अब हम कहें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये तो गलत हो रहा है, क्रिटिसाइज करें, किसी के उमंग गुस्सा को ढीला कर दे में, ये यज्ञ स्नेही की निशानी नहीं है, इसको यज्ञ स्नेही नहीं माना जाएगा। और बाबा के समीप कैसे आएगा, जो यज्ञ के स्नेही नहीं है बाबा के समीप कैसे आएगा, बाबा उसको कैसे शक्ति और वरदान देगा, दुआएं देगा, उसको मदद करेगा। जो भी हैं, जैसे भी हैं बाबा के बच्चे, अपनी यथाशक्ति जो भी जहां भी कार्य कर रहे हैं, मेरा कार्य बनता है मैं उसको दिल से अप्रिशिएट करूं, वाह, उमंग उत्साह पैदा करूं, आगे बढ़ाऊं उसको, इसको कहते हैं यज्ञ स्नेही, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना, बाबा के वत्सों को आगे बढ़ाना, उनके अंदर जितनी भी शक्ति है, गुण और शक्तियां हैं, उनको एप्रिशिएट करना, विशेषता भी तो है। अगर कोई एक आधी कमी हमें नजर आती है उसके अंदर, क्या विशेषता नहीं है उसके अंदर? और सबसे पहली विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता कि ये वो आत्मा है जिसने भगवान को जाना और पहचाना है। कोटों में कोई तो है ना, लिस्ट में तो है ना, बाबा की लिस्ट में तो है ना, तो हमें प्यार तो करना है ना ऐसी आत्मा को, है तो अपना ना, इसे कहते यज्ञ स्नेही। ये गहरा मायना है यज्ञ स्नेह का, नहीं तो विघ्न है ये भी। मैं बाबा के किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए भी अगर अपनी अच्छी भावना नहीं रखता, इट इज नॉट यज्ञ स्नेही, नो, बाबा है ना। आप देखिए, मैं एक और आपको सूक्ष्म बात सुनाता हूं, आप देखिए दुनिया में भी है, अगर आप कोई काम चाहते हो, कोई आपको स्नेह करे, प्यार से देखे, आपसे अच्छी फीलिंग देवे आपको ना, तो आप उसके बच्चों को प्यार करने लग जाते हो। जिसके बच्चों को आप प्यार करोगे ना, गुड फीलिंग दोगे ना, तो मां बाप को बड़ा अच्छा लगता है। देखो, लगता है कि नहीं लगता है? और अगर गुड फीलिंग ना दो बच्चों को, तो मां बाप को भी नहीं अच्छा लगता। ऐसे जितने भी यज्ञवत्स हैं किसके, आज जो सेंटरों पर या परिवार में जो बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारी रहते हैं, ये किसके हैं, बाबा के। अगर मैं आज किसी के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखता, बाबा मेरे लिए कैसी फीलिंग रखेगा? बाबा से मैं शक्ति लेना चाहता हूं, बाबा से प्यार लेना चाहता हूं, और बाबा के बच्चों के लिए अच्छी फीलिंग नहीं मैं रखूं, ये हो सकता है? बाबा प्यार करेगा, बाबा शक्ति देगा, हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी सूक्ष्म राज को समझो, जो भी है, जैसे भी हैं बाबा के ना, बाबा तो उनको प्यार करता है ना, नहीं करता बाबा प्यार? बाबा हरे को प्यार करता है, मेरा भी फर्ज बनता है, बाबा के बच्चे हैं, मेरे भी भाई बहने अपने हैं, ये है यज्ञ स्नेही। इंसान की बात तो छोड़ो, मैं सोनीपत में, वहां हमारे पास गायें रखी हुई हैं, गाय है हमारे पास छोटी बड़ियां। तो मैंने एक बार देखा तो एक छोटी बच्ची है, बड़ी गाय, उसकी माँ भी साथ ही खड़ी थी। मैंने देखा कैसे रिएक्ट करती है उसकी माँ। मैंने बच्ची को, छोटी गाय बच्ची को ऐसे प्यार किया, अब वो हंस मुस्कुराती तो नहीं है गाय, मगर एक अच्छी फीलिंग दे रही थी कि उसको अच्छा लग रहा था कि उसकी कोई बछड़ी को प्यार कर रहा है। फिर मैंने कहा कि मैं और तरीका देखता हूं, मैं एक डंडा सा लेकर के ना उसकी बच्ची की तरफ बढ़ा। वो बंधी हुई थी गाय, वो ऐसे ऐसे करने लगी जैसे मैं कैसे भी इसको पकड़ू। इसको देखो ये क्या चीज है, जिसके आप बच्चों को प्यार करोगे वो प्यार करता है, जानवर भी। ये तो शिव बाबा है। बाबा से समीपता और शक्ति का अनुभव करना है तो उसका बहुत इजी, एक आपको मनन चिंतन की बात सुनाई, दूसरी ये है हर बाबा के बच्चे को, चाहे वो उसके अंदर कुछ भी है, उसको भी अंदर स्नेह प्यार, उसका कभी कमी कमजोरी का चिंतन ना करो। बैठ के किसी के साथ किसी की कमी कमजोरी का चिंतन करना ये बाबा से समीपता नहीं, डिस्टेंस पैदा करेगा। बाबा की शक्ति का अनुभव नहीं होगा, आपके योग में डिस्टर्बेंस का अनुभव होगा, आप एकाग्र नहीं बन पाओगे, शक्ति नहीं ले पाओगे। अंदर कारण क्या है कि आप बाबा के बच्चों के लिए जितना स्नेह और प्यार है उतना नहीं कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है, चेक करो। हम कई कारणों से, अपने ही कारणों से हम एक दूसरे के लिए अच्छी भावना कई दफा नहीं रखते हैं। चलो ना रखें अलग बात है, मगर दूसरों के साथ भी वर्णन करते हैं, वो डिस्टेंस पैदा करता है। ये यज्ञ स्नेही की निशानी नहीं है, इसलिए हमें यज्ञ स्नेही बनना है, बाबा से समीपता का अनुभव करना है, शक्तियों का अनुभव करना है। तो जो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करो। बाबा क्या, बाबा ने क्या किया, हम बाबा के पास आए जैसे थे, बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया, आओ बच्चे, बाबा ने गोद में बिठा लिया, आओ बच्चे, एक्सेप्ट कर लिया, और हमें अपना बना के फिर ठीक कर रहा है, फिर ठीक कर रहा है। देखिए ऐसे नहीं कहा बाबा ने कि ठीक हो के फिर मेरे पास आओ, हम जैसे भी हैं बाबा अपना बनाता है और फिर शक्तियां दे के ठीक करता है, ऐसे हमें करना है। भले किसी की कमी कमजोरी हमें नजर आती है, कोई चीज ऐसी नजर आती है हमें, मगर हमारा काम क्या है, हमें उसको स्नेह प्यार देना है। स्नेह प्यार ऐसी चीज है जो परिवर्तन करती है, दूसरे के अंदर बदलाव पैदा करती है। हमें स्नेह प्यार देना है, हर एक को अपना बाबा का है श्रीमत के अनुसार, श्रीमत को बीच में रखते हुए, श्रीमत को बीच में रखते हुए हर एक को बाबा का है, ये अपना है बस ना। दो चार मिलकर के ग्रुप बना ले में रॉन्ग श्रीमत के अगेंस्ट, ये यज्ञ की, ये स्नेह की निशानी नहीं है। ये विघ्न पैदा करते हैं, यज्ञ में कठिनाई पैदा करते हैं ना। साकार ममा बाबा को हमने देखा, बाबा कहता था नो, ये संस्कार अच्छा नहीं है। अपने कारणों से, अपने किसी वजह से, अपने ईगो की वजह से हम कुछ और काम करने लग जाते हैं जिससे यज्ञ को नुकसान पहुंचाता है, ओवरऑल यज्ञ को प्रश्नार्पण। इसलिए यज्ञ स्नेही का मायना ये है, हम अपने अपने मैंपन को त्याग दें। मेरी कोई बात थी, किसी के कारण कोई छोटी सी बात हो गई, उसके कारण मैं क्यों इसको विस्तार में जाऊं, क्यों प्रेस्टीज का क्वेश्चन बनाऊं? नो नो, दिस इज नॉट यज्ञ स्नेही, ये बाबा का यज्ञ है, इसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। कोई ऐसी चीज मेरे मन वचन कर्म से ना हो जो कि बाबा के कार्य में छोटा मोटा भी नुकसान हो, तकलीफ हो। मेरे कारण किसी के भी थॉट सिस्टम में डिस्टर्बेंस आए, ये यज्ञ स्नेही की निशानी नहीं है, ये सूक्ष्म रास, ठीक है ना, तभी है। मोटी मोटी बातें तो सेंटरों पर आप सुनते रहते हो, मधुबन में आए हो भाई, यहां यहां कोई सूक्ष्म राज समझ के जाओ नहीं। मेरा किसी से स्वभाव संस्कार मिले ना मिले फिर क्या हुआ, वो तो अलग अलग होते ही हैं, पर हैं तो हम बाबा के हैं, तो एक परिवार के, इनका भी लक्ष्य अच्छा है, मेरा लक्ष्य भी अच्छा है, दोनों के मन बुद्धि में बाबा है, एक चीज तो कॉमन है ना, बाकी चीजें ठीक है, आस्ते आस्ते सब बाबा बैठा हुआ ठीक करेगा, बाबा बैठा हुआ है ना, कोई भी जिसे बाबा कहता ला अपने हाथ में नहीं उठाए। यज्ञ स्नेही की पहली निशानी यह है, ला अपने हाथ में नहीं, बाबा निमित्त बैठे हुए हैं, सब बाबा के कार्य के सब निमित्त बैठे हुए, हम क्यों अपने ला हाथ में उठाए, कोई विचार आता अच्छा दे दिया बस, उसके लिए बाबा ने कहा बालक और मालिक, विचार भी दियो और इजी भी रहो, बस ना स्ट्रेस में आओ ना स्ट्रेस पैदा करो, ये है यज्ञ स्नेही ना आएगा। लाइट रहते हैं लाइट रखते हैं बस, उससे आप देखो बड़ा मजा आता है, कुछ नहीं है, है ही कुछ नहीं, ये योग में ये चीज योग इजी योग हो जाएगा आपका, इतना अच्छा हो जाएगा बात मत पूछो, योग मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा छोटी छोटी भूले ही योग में विघ्न का कारण बनती हैं, छोटी छोटी भूले, मेरे योग में डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो मैं क्या करूंगा, फिर मुझे अपना तो रास्ता ठीक रखना है। क्लीन एंड क्लियर बुद्धि वाले का योग अच्छा हो जाएगा, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि वो यज्ञ स्नेही है और बाबा के समीप है। थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति, ओम।
अब हमें और क्या चाहिए।